चाहे सर्ग हो चाहे विसर्ग हो, चाहे स्थान हो चाहे पोषण हो, चाहे ऊती हो चाहे मनवंतर हो, चाहे ईशानुकथा हो चाहे निरोध हो, चाहे मुक्ति हो चाहे आश्रय हो, प्रत्येक स्कंद का आधार परब्रह्म परमात्मा होंगे। यही बात समझानी है। विसर्ग माने इस संसार में आकर के जीव अपनी तरफ से पुरुषार्थ से जो सृष्टि बनाता है वो विसर्ग है। ये बात विसर्ग के रूप में चौथे स्कंद में समझा दी जाएगी। स्थिति का अर्थ क्या है कि प्रतिपद नाश की तरफ जाने वाली सृष्टि को भगवान अपने धैर्य शक्ति से इसको धारण करते हैं। इसका नाम है भगवान की स्थिति, भगवान का विजय। स्थितिर वैकुंठ विजय है। भगवान का जो विजय, भगवान का पराक्रम कितना विचित्र है कि गामा विश्वज भूतानी धारिया में मोजसा, मैं पृथ्वी को धारण करता हूं। ध्यान देवे पृथ्वी को कैसे धारण करते हैं, चारों तरफ पृथ्वी के पानी पानी है, फिर भी देखो हम लोग डूबे नहीं है पानी में। पृथ्वी की सतह से पानी की सतह ऊंची है, फिर भी पृथ्वी पानी के अंदर डूबी नहीं है। ये आकाश नीला दिखाई देता है, कारण क्या है कि सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ता है और वो पानी की आभा ही ऊपर आकाश में पानी के रंग को बता रही है। और भगवान इस पृथ्वी को धारण करते हैं, तो अर्थात गामा विश्वच, मैं इस पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी को धारण करता हूं। ऐसे ही भगवान सृष्टि में स्थित होकर सृष्टि को धारण करते हैं। नाश की तरफ जाने वाली सृष्टि में कितना विप्लव हर समय हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान सृष्टि को कायम रखते हैं। ये भगवान का पराक्रम है जो पांचवें स्कंद में हमको सुनने को मिलेगा। पोषणम तदनुग्रह, छठा स्कंद पोषण स्कंद है कि जहां हम जानेंगे कि जीव है, इसका पोषण भगवान किस प्रकार से करते हैं। मां भी बालक का ऐसा पोषण नहीं कर सकती जैसा पोषण भगवान जीव का करते हैं, ये वहां की कथाओं से ज्ञान होगा। और ऊती स्कंद है, वो सातवां स्कंद है। ऊतय माने ऊतय कर्म वासना, जीव की तरह तरह की वासनाओं से जीव का निर्माण होता है। जैसे कपड़ों के धागे से कपड़ा बनता है, ऐसे ही कपड़ा भी देखो, कपड़े बनते हैं तो कुछ तो धागे यूं जाते हैं और कुछ धागे यूं जाते हैं, तब जाके कपड़ा बनता है। ऐसे ही कुछ तो किस जन्म के कर्म है, कुछ किस जन्म के कर्म है, इन सबको मिला करके और जीव का एक कलेवर बनता है, शरीर बनता है। अमुक अमुक शरीरों में जाना होता है, यह उसकी वासनाओं के आधार पर है। तो वासनाओं का ज्ञान सातवें स्कंद से होता है। मनवंतराणी सद्धर्म, और ये जो सद्धर्म उनका नाम मनवंतर है, जहां मनु शासन करते हैं और शासन करके धर्म को बचाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो वो आठवें स्कंद में बात आएगी कि कैसे कैसे सद्धर्म है, श्रेष्ठ धर्म क्या है। अभी तो यहाँ केवल सामान्य अर्थ कर रहे हैं, फिर एक एक स्कंद में इन लक्षणों को घटाएंगे तो पता चलेगा कि भागवत कितना विचित्र और कितना विलक्षण पुराण है। अवतारानुचरितम, और ईश कथा क्या है, नवम स्कंद में भगवान की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है। इस कारण से वो बड़ा पवित्र है, सबको पवित्र करने वाला, नानाख्यानोपबृंगिता। निरोध क्या है कि जिस प्रकार से हम सोते समय में हम सब विचारों को समेट करके एक गहरी नींद में सो जाते हैं, सब संकल्प हमारे सोने में लीन हो जाते हैं, और जिस इसी प्रकार से भगवान भी सारे संसार के प्रलय के समय में सबकी शक्तियों को अपने अंदर समेट लेते हैं। यही बात दशम स्कंद में बताई जाएगी। बड़ा विचित्र है दशम स्कंद, तो इतना उछल कूद को बताने वाला है, और उसके लक्षण में कहा इसका नाम निरोध है। अब वो निरोध क्या है, वो भक्ति शास्त्र में जो निरोध का लक्षण किया है और भागवत का जो निरोध लक्षण किया है, दोनों के द्वारा दशम स्कंद क्यों निरुद्ध स्कंद है ये वहां पर बताया जाएगा। और मुक्ति का स्वरूप क्या है कि मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा स्वरूप का त्याग करके वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, इसका नाम मुक्ति है। ये एकादश स्कंद में बात आएगी। और आभासश्च निरोधश्च, आश्रय किसे बोलते हैं कि जिससे संसार प्रतीत होता है, उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, जिसमें प्रतीत हो रहा है, जिससे प्रतीत हो रहा है, और जिसे प्रतीत हो रहा है, जिसमें हो रहा है और जिस और जिसे प्रतीत हो रहा है, वो आभास और निरोध से परे है और उनका आश्रय है। उस आश्रय का निरूपण बारहवें स्कंद में किया है। बारहवें स्कंद को बहुत छोटा स्कंद है, लेकिन उसको सामान्य नहीं समझे, उसमें बहुत विचित्र विचित्र गूढ़ बातें आएंगी। अब आश्रय तत्व का थोड़ा सा विवेचन यहाँ सुखदेव जी महाराज करते हैं कि भाई ये हमारे शरीर में हम देखते हैं हमारे पास तीन चीज है, एक आध्यात्मिक, एक आधिदैविक, एक आदि भौतिक। एक तो ये स्थूल शरीर है, और एक स्थूल शरीर के अंदर हमारे इंद्रियां हैं, और साथ साथ में इंद्रियों के देवता हैं। तो इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, शरीर और विषय। तो शरीर और विषय ये तो आ गए अधिभूत के क्षेत्र में, इंद्रियां आ गई अध्यात्म क्षेत्र में, और अधिदेव में आ गए इंद्रियों के देवता। जैसे नेत्र के देवता सूर्य है, कान के देवता दिशाएं हैं, नाक के देवता अश्विनी कुमार है, इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियों के जो देवता हैं, इन सब में एक चैतन्य रहता है, एक ज्ञान तत्व सब में है। देखो विषय में भी ज्ञान है, इसमें भी ज्ञान है, पुस्तक में भी ज्ञान है, और ये जो पदार्थ है जो हमको यूं दिखता है केवल बाहर से, इसके अंदर भी ज्ञान है। अब यदि इसमें ज्ञान न हो तो इसको देखने पर जो हमें ज्ञान होता है कि यह कुछ है, यह है, जो ऐसा ज्ञान होता है, यदि इसमें ज्ञान न हो तो हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो प्रमातागत चैतन्य, प्रमाणगत चैतन्य और प्रमेयगत चैतन्य, तीनों की जब एकता होती है तब वस्तु का ज्ञान होता है। इंद्रियों में रहने वाला चैतन्य, इंद्रियों के अभिमानी देवता में रहने वाला चैतन्य, और जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसमें रहने वाला चेतन, ये तीनों चेतन माने तीनों ज्ञान मिलता है, तब जाकर के उस वस्तु का ज्ञान होता है। इन तीनों में से किसी एक का भी अभाव हो जाए, माने ये वस्तु हमारे सामने नहीं रहे, तब ज्ञान नहीं होगा। वस्तु तो हमारे सामने है, लेकिन आंख हमारी लुप्त हो गई, तब ज्ञान नहीं होगा। और आंख भी है और वस्तु भी है, लेकिन शरीर नहीं है जहां इंद्रियां काम करती हैं, तो भी ज्ञान नहीं होगा। तो कहा एकम एक तरह भावे, यदि इन तीनों में से एक का भी अभाव हो जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा। और इन तीनों का जो परम आश्रय है उसको हम आश्रय के नाम से कहते हैं, ये आत्मा स्वाश्रयाश्रय, इन तीनों का ज्ञान जिसको अंत में जाकर होता है वो वास्तव में सबका आश्रय है, सबको देखने वाला है। उसी के कारण से इंद्रियों में ज्ञान आया। बताया था कि जो कुएं में जल होता है वही कोठे में आता है, कोठे का ही जल फिर क्यारियों में जाता है, खेत में जाता है। इसी प्रकार से आत्मगत ज्ञान है वही इंद्रियों में और वही विषयों में जाता है। तो वो आत्मगत ज्ञान है, आत्मा है, वो किसी के आश्रित नहीं है, स्वाश्रित है, परमात्मा स्वाश्रित है। इस कारण से परमात्मा हमारे परम आश्रय है, इस बात को समझना चाहिए। सबसे पहले विराट पुरुष जब पैदा हुआ है, एक बिल्कुल अंडाकार था ये सारा सृष्टि समुदाय, इसके अंदर भगवान ने प्रवेश किया, तो आत्मनो अयना मानविच्छन। देखो ये बात तीन चार जगह आ जाएगी और शायद आज के ही प्रसंग में आ जानी चाहिए। ये सब बातें सुनकर के उबना नहीं चाहिए कि भागवतकार एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हैं। बार बार देखो ये भागवत ही व्याख्यान नहीं है, भागवत एक ऐसा दिव्य अमृत है, उपदेश है। इसको तो कहा कि बार बार पीना चाहिए, मुंह रहो रसिका भूमि भाव का प्रवचन होता है, उपदेश होता है, जहाँ गुरु शिष्य का संवाद होता है, जहाँ उपदेष्ट्री और उपदिष्ट जो होए और उपदेश्य है, वहाँ किसी की पुनरावृत्ति को नहीं देखा जाता। भागवत में प्रश्न की भी पुनरावृत्तियां मिलेंगी और भागवत में उत्तर की भी पुनरावृत्ति मिलेगी। माने एक चीज को बार बार कई ढंग से समझाया जाए और उसे समझा जाए तो वो बहुत अच्छे ढंग से श्रोता के समझ में आती है, और वक्ता भी वही है कि जो कई रीति से उसको समझा देवे तो वो पुनरावृत्ति नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। जहां जहां सृष्टि के वर्णन में बात आएगी बाहर से तो वो थोड़ी थोड़ी एक बात मिलेगी, गहराई से उसमें थोड़ा भेद मिलेगा। तो ये सारा का सारा सृष्टि रूप अंडा था, इसके अंदर भगवान ने प्रवेश किया। प्रवेश करके भगवान के मन में आए कि इस अंडे को कहां रखे, तो उन्होंने पवित्र जल का निर्माण किया, जल के अंदर ये अंडा पड़ा रहा और ये हजारों वर्षों तक वहां अंडा पड़ा रहा। तब इसका नाम, जिस माने नारायण नाम इसका रहा, भगवान का नाम नारायण, तो माने जल के अंदर उन्होंने अपना स्थान रख दिया, इसलिए इसका नाम नारायण। नारायण की व्याख्या यदि सुननी होगी तो अपने को ब्रह्मा जी की स्तुति में सुनना है कि नारायण की कैसी कैसी व्याख्या की है वह। यहां तो सीधी सादी बात कह रहे हैं कि यदाप पुरुषोद्भवा, वो एक जल है जो नारायण से पैदा हुआ था और उसी में जाकर नारायण ने निवास किया है सृष्टि के साथ। अब नारायण के मन में नारायण ने द्रव्य कर्म स्वभाव जीव इन सब को लेकर के और अब सृष्टि का नानात्वम अन्विच्छन अपने रूप को नाना प्रकार से बनाने के लिए तरह तरह से संकल्प किया। तो भगवान ने अपने तेज को सृष्टि में रख दिया तो वो तीन प्रकार से विभक्त हुआ, अधिदेव अध्यात्म और अधिभूत। बताया था अधिभूत माने शरीर और विषय, अध्यात्म माने इंद्रियां और अधिदेव माने देवता। ये सब प्रकट हो गए, एक ही नारायण में से सब चीज प्रकट हो गई। प्रकट होने की बात बता रहे हैं कि जब उनके हिलने डुलने की इच्छा हुई तो आकाश पैदा हो गया जिसने अवकाश दे दिया, जब खाने पीने की इच्छा हुई उनके प्राण चलने लगे, खाने पीने की इच्छा हुई तो मुख पैदा हो गया, मुख में आकर के अग्नि बैठ गए, फिर तालू पैदा हो गया, सुनने की इच्छा हुई तो कान पैदा हो गए, सूंघने की इच्छा हुई तो नाक पैदा हुआ। माने भगवान की इच्छा से हुआ हो, भगवान के सुनने की इच्छा हुई तो कान पैदा हो गया, ये भगवत संकल्प सृष्टि बता रहे हैं। और जब बोलने की इच्छा हुई तो मुख पैदा हो गया, देखने की इच्छा हुई तो उस समय में नेत्र पैदा हो गए, और वस्तु कठिन है कि मृदु है इस बात के जानने की इच्छा पैदा हुई तो त्वचा आकर बैठ गई, कुछ ग्रहण करने की इच्छा हुई तो हाथ आ गए, चलने की इच्छा हुई तो पैर आ गए। सारी की सारी इंद्रियां इस विराट पुरुष में भगवान के संकल्प से पैदा हुई, और फिर तो ये सारा संसार पैदा हो ही गया, नदियां समुद्र आदि सब भगवान की इंद्रियां हैं, ये सब पैदा हुई। पर याद रखो परीक्षित, ये जो भगवान का स्थूल रूप है ये विद्वानों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, विद्वानों ने इसका आदर नहीं किया है। उभे अपि न गृणन्ति, इन दोनों ही शरीरों को माने कारण शरीर और सूक्ष्म और स्थूल शरीर, इन दोनों को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने केवल भगवान को देखा। अरे भाई, कोई आदमी बगीचे में जावे और सुंदर सुंदर फूलों को देखे तो भाई ये बगीचा बड़ा सुंदर है, लेकिन बगीचा तो सुंदर है लेकिन इसके मालिक के साथ प्रेम नहीं करोगे तो बगीचे का फूल मिलेगा नहीं, तो वो मालिक के साथ प्रेम करेंगे तभी इस बगीचे का सुख मिलेगा। इसी प्रकार से महात्माओं ने संसार को सुंदर देख करके इस सुंदरता की खास जगह भगवान को ही देखी, इसका खास अधिष्ठान भगवान में देखा और भगवान के साथ ही प्रेम करना उचित समझा। इस प्रकार से वे भगवान के इस सृष्टि के साथ प्रेम नहीं करते हैं। तो इसी सृष्टि से ऊपर उठाने के लिए, नाम और रूप से ऊपर उठाने के लिए सृष्टि भगवान ने बनाई है कि जीव मेरे से प्रेम करेगा। नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परे, भगवान अकर्ता सिद्ध करने के लिए सृष्टि बनाए हैं। कैसा विचित्र मुहावरेदार ये भागवत का श्लोक है भाई, माने अकर्ता को सिद्ध करने के लिए भगवान सृष्टि रूप कर्म करते हैं, क्योंकि इसी से ही जाना जाएगा कि भगवान अकर्ता है। भगवान रूप वाली सृष्टि को बना करके ही सिद्ध करेंगे कि मैं रूप से रहित हूं। भगवान सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का नाम बता करके कहेंगे मैं नाम रूप से अलग हूं। यही भगवान की भगवत्ता है। उन्होंने ही मनुष्यों को, पितरों को, पशुओं को, पक्षियों को, कुष्मांडों को, अप्सराओं को, पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, सबको बनाया है। तत्रापि एक एक सो राजन, अब एक एक में से तरह तरह की जो गतियां निकली हैं सब भगवान के ही इन सब स्वरूपों में बदले हैं। तो नेत्थम भावे नहीं परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूर्य, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये तो मेरे सृष्टि का बाहरी रूप बताया है, लेकिन विद्वान पुरुष है वो भगवत पदार्थ से जब ज्ञान करना चाहते हैं तो केवल सृष्टि तक अपनी दृष्टि नहीं रखते हैं, सृष्टि के बीज पर अपनी दृष्टि डालते हैं कि बीज बड़ा अच्छा है। जैसे कोई हम फल लेते हैं कि ये फल अच्छा नहीं है इसका अर्थ इसका बीज अच्छा नहीं है, और फल बड़ा अच्छा है इसका अर्थ इसका बीज बड़ा अच्छा है। तो सृष्टि में जो कुछ अच्छापन दिखता है वो सब का सब परमात्मा इसके बीज में है, इस बीज के ऊपर वे ध्यान देते हैं। तो ये हमने तुमको सृष्टि का रूप बताया। सौनक जी कहते हैं महाराज, ये सृष्टि का रूप तो आपने ठीक है बताया, अच्छी बात है। आप बता रहे थे कि विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास में गए थे ज्ञान लेने के लिए, तो मैत्रेय का और विदुर का क्या संवाद हुआ बताओ। महाराज, उन्होंने भाई बंधुओं से भरा हुआ अपना परिवार छोड़ दिया, और ऐसा उन्होंने घर छोड़ा कि जिसमें भगवान भी पधारे थे। अरे भगवान के चरण जहां हो जाए वो तो स्वयं तीर्थ है, विदुर जी को तीर्थ यात्रा की आवश्यकता ही क्यों हुई, वे अपने घर में ही बैठे अपने घर को ही तीर्थ बना सकते थे, क्योंकि भगवान उनके घर में जो पधारे, फिर उन्होंने अपना वो घर छोड़ा और वे तीर्थों में गए, इसका क्या कारण था। सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो, यही बात एक बार राजा परीक्षित ने पूछी थी। जैसे आप हमारे से पूछे हो सोनकादि ऋषियों, ऐसे ही राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी महाराज से पूछा। सुखदेव जी ने जब ये कहा कि देखो भाई, तुम्हारा जो प्रश्न का क्रम है, यही प्रश्न का क्रम विदुर जी ने मैत्रेय जी के सामने रखा था, तो बीच में ही परीक्षित ने पूछा कि महाराज, ये विदुर जी घर का त्याग करके क्यों गए, ये हमको बताओ। तो सुखदेव जी बताने लगे। अब तीसरा स्कंद चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से सुनना भी। तीसरे स्कंद में भी, तीसरा स्कंद का सार इतना ही है कि जैसे हम किसी भी वस्तु को बाहर से देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, मकान देखते हैं, रंगाई पुताई किया हुआ मकान है, बड़ा अच्छा लगता है, हमारे मन को मोहित करता है। लेकिन उस मकान की जो वस्तुएं हैं, ईंट है, पत्थर है, चूना है, रंग है, लकड़ी है, जब अलग अलग खिंडी हुई, अलग अलग बिखरी हुई रहती है, खंडित रूप में रहती है, तो हमारे मन में इतना उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है। तो भगवान ये बताना दिए, सुखदेव जी महाराज बताना चाहते हैं कि भाई, सृष्टि का कारण तत्व कौन है, उस पर विचार करो। कारण पर विचार करते ही सृष्टि से तुम्हारा मोह हट जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि के मूल कारण परमात्मा है। अब उसको तरह तरह से समझा रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई, एक बार की बात है कि जब धृतराष्ट्र ने लाक्षागृह के अंदर पांडवों को जलाने का षड्यंत्र का ज्ञान कर लिया, और जब भरी सभा के अंदर द्रौपदी को नग्न करना चाहा, उसके केस पकड़ करके उसको घसीटा गया, इतने पर भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, तो उस समय में फिर भगवान को भी बड़ा कष्ट हुआ। भगवान उनकी सभा में आए, भगवान ने आकर के उनको बड़े अमृतमय उपदेश से उनको समझाया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र नहीं माना। तब धृतराष्ट्र के मन में बड़ी बेचैनी हुई, तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से पूछा, हे विदुर, क्या करूं, मेरा हृदय बड़ा जल रहा है, इसकी शांति का उपाय क्या है। तो विदुर जी ने जो शांति का उपाय बताया, उसे विदुर नीति के नाम से बोलते हैं। उन्होंने समझाया कि देखो धृतराष्ट्र, ये आजाद शत्रु को आप अपना राज्य दे दो, नहीं तो भीमसेन रूपी सर्प है, इसके क्रोध से आपको जहरीले फणों से दुखी होना पड़ेगा। और आपको याद रखना चाहिए कि आपने पांडवों को अकेला समझ लिया है, ये पांडव अकेले नहीं है, भगवान मुकुंदो गृहीतवान, भगवान मुकुंद ने इन पांडवों को अपने पक्ष में कर रखा है, पांडव इनके पक्ष में है। अब पांडव केवल पांडव नहीं है, अब गोविंद सहित पांडव है। पांडवों के अंदर गोविंद को देखो और गोविंद की शक्ति को तुम पहचानो कि उसमें कितनी शक्ति है। अभी भी तुम संधि कर सकते हो, अन्यथा धृतराष्ट्र, अभी तो तुम्हारा हृदय क्या जला है, आगे तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा जलने वाला है। और तुम याद रखो कि ये दुर्योधन तुम्हारे किसी पाप के फल से ही तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है, जिसको तुम अपना बेटा मानते हो, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, इसको बहुत जल्दी ही अपने कुल की कुशलता चाहते हो, तो त्याग दो और भगवान से प्रेम करो, पांडवों से प्रेम करो। विदुर जी ने साफ साफ बात बता दी। तब भरी सभा के अंदर दुर्योधन खड़ा होकर के कहने लगा कि देखो महाराज, ये राजाओं की सभा है, यहाँ राजपुत्र आ सकते हैं, दासी पुत्रों की ये सभा नहीं है। क्या अधिकार है विदुर को ये कहने का कि तुम दुर्योधन को बाहर कर दो? हम कहते हैं कि विदुर को तुम्हें बाहर कर देना चाहिए। निर्वास्यताम आशु, जल्दी करो, इस विदुर को यहां से बाहर निकाल दो। विदुर जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई का लड़का है, भतीजा है, और वो अपने भाई, अपने पिता के जोर से हमको पिता के सामने निकल जाने की बात कहता और पिता कुछ नहीं बोला है। उसी समय में अपना धनुष तो वहां रख दिया, बाण वहां रख दिए और वो हस्तिनापुर को नमस्कार करके वहां से चले गए। देखो परीक्षित, विदुर जी नहीं गए थे, हस्तिनापुर का सारा पुण्य पुंज था विदुर, वो आज हस्तिनापुर से पुण्य रवाना हो गया, अब हस्तिनापुर में पाप ही पाप रह गया था। विदुर जी महाराज बड़े शांत होकर के तीर्थों में विचरण करने लगे, जगह जगह गए। प्रभास क्षेत्र में जब गए तब उनको मालूम चला कि कौरवों के, पांडवों के इस युद्ध के अंदर पांडवों की विजय हो गई है, कौरवों का संहार हो गया है। तो सबको सुनकर के एक बार तो थोड़ा दुख हुआ, फिर वे घूमते घामते सरस्वती नदी के किनारे आए और फिर आगे और तीर्थों में जाते जाते यमुना नदी के किनारे आए। अब भाई थोड़ा संवाद बड़ा गंभीर हो रहा है, आप लोग बड़ी शांति से सुनेंगे। यमुना नदी के किनारे परम भागवत उद्धव के दर्शन किए। जो ही उद्धव जी मिले, विदुर जी महाराज उद्धव जी के चरणों में गिर गए। बड़े प्रेम से उद्धव जी ने उनका आलिंगन किया और विदुर जी ने पूछा कि हे उद्धव, तुम तो हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण के परम मित्र हो और तुम तो शायद अभी द्वारिका से आए होंगे, बताओ श्री कृष्ण के क्या हालचाल है। कृष्ण और बलराम इस संसार का उद्धार करने के लिए अवतार लिए, वे सुखपूर्वक तो हैं? क्या वसुदेव जी सुखपूर्वक हैं? क्या प्रद्युम्न सुखपूर्वक है? उग्रसेन जी आराम में है? युयुधान को कोई कष्ट तो नहीं है? और सांब है जिसको धारण करने पर जाम्बवती बड़ी गौरवान्वती हुई है, क्या उसमें सांब है वो आनंद में है? अक्रूर जी का कुछ नहीं बिगड़ा ना? अनिरुद्ध जी बिल्कुल ठीक है? इस प्रकार से कहते कहते, अच्छा बताओ, हमने सुना है कि पांडव लोग अब राजा बन गए हैं, तो क्या युधिष्ठिर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते होंगे ना? दुर्योधनो अत्यपत यत सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्या। इसी युधिष्ठिर की राज लक्ष्मी से दुर्योधन के मन में जलन हो गई थी, वो दुर्योधन अपने पाप से ही नष्ट हो गया। क्या भीमसेन का पहले जैसा क्रोध तो नहीं रहा? और गांडीव धनवा अर्जुन, जिसने कि माया से किरात बने हुए शंकर भगवान को भी अपने बल और पौरों से चकित कर दिया था और फिर शंकर भगवान को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, क्या वो यशोधा अर्जुन सब प्रकार से अपने भाइयों की रक्षा में नियुक्त है ना? और वे दोनों, वो नकुल और सहदेव, जिनको कुंती अपने गोद में बैठाती है और जिन कुंती सदा जिन दोनों की रक्षा करती है, वो नकुल और सहदेव प्रसन्न तो है? बिचारी कुंती के लिए क्या बताऊं, बहुत उसने कष्ट सहा है। एक सम्राट, एक आदि छत्र जिसका राज्य था पांडु का, उसके मर जाने के बाद बहुत कष्ट से अपने बालकों का पालन पोषण किया है। ऐसी कुंती बड़ी प्रसन्न तो है, पुत्रों के राज्य मिल जाने के बाद अब वो सुखपूर्वक तो बैठी है। अरे ये तो भाग्य के सुख दुख है उद्धव जी महाराज, हमें सबसे बड़ा कष्ट धृतराष्ट्र को लेकर हो रहा है। जो धृतराष्ट्र इतना पाप किया है, अब उसने और तो और मेरे जैसे को भी घर से निकाल दिया जो उसकी हित की बात सोचता था। कोई बात नहीं है, मैं तो अपने प्यारे की लीला समझ करके इसमें बड़े मस्ती के साथ रह रहा हूं। सोहम हरेर मर्त्य विडम्बने न दृशो नृणाम चालय तो विधातु। मैं तो भगवान की कृपा मान रहा हूं, नानोपलक्ष्य पदवीम प्रसादात, उनकी कृपा प्रसाद को मान करके, उनकी कृपा को उनके प्रसाद को मान करके बड़े आराम से इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूं। कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य में जैसा होना था वैसा हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कार्य अच्छा नहीं किया है। तो आप भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहो, मैंने बीच में यूं ही बात छेड़ दी। भगवान तो भाई पृथ्वी पर भार हल्का करने के लिए, राक्षसों का बहुत ज्यादा भार हो गया, पापों का भार बढ़ गया, इसी कारण से उन्होंने अवतार लिया था। अब बताओ कृष्ण का क्या चरित्र है, जो एक बार भी उनके शरण में चला जाता है वे उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। हे सखे, आप उन कृष्ण की चर्चा कहो, औरों की चर्चा तो अब सुनते सुनते हम ऊब गए हैं, कृष्ण चरित्र सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से विदुर जी की बातों को सुने तो उद्धव जी महाराज के नेत्रों से टाप टाप करके आंखों से आंसू आने लग गए। ये वे ही उद्धव है जो परीक्षित 5 वर्ष की अवस्था में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का, कृष्ण की मूर्तियां बना बनाकर खेलते थे और वे ही कृष्ण के साथ रहे। जो ही विदुर जी ने कृष्ण का स्मरण कराया, स्मरण तो पहले से चल ही रहा था, कृष्ण के विषय में और कुछ कहने के लिए प्रेरित किया तो वे तीव्र भक्ति योग में डूब गए और एकदम वहां अचेतन से होकर के रोने लग गए, सिसकियां मारने लग गए। स्नेह प्रसर संप्लुत है, कितना विचित्र पद दिया है। भागवत का संस्कृत बड़ा ललित है और बड़ा सार्थक संस्कृत है, ऐसे ऐसे शब्द दिए, वो शब्द ही भाव को बोलते रहते हैं। स्नेह के अंदर बिचारे वो फैल गए, स्नेह में डूब गए और फिर बड़े मुश्किल से धीरे धीरे अपने मन वाणी को बाहर किए और नेत्रों के अंदर से आने वाले जल था, उस जल को उन्होंने पूछा, आंसुओं को पूछा और फिर विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्ताचल की तरफ चले जाने के बाद अब आप हम लोगों की क्या कुशल क्षेम पूछ रहे हो। ये यदुवंशी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने कृष्ण को कृष्ण नहीं समझा, भगवान नहीं समझा, केवल अपने में एक योद्धा ही समझा था। इंगितज्ञा पुरु प्रौढ़ा, इस ये यादव लोग हर बात को इशारे से समझने वाले थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भगवान को समझने में उनका ज्ञान काम नहीं आया। और दूसरे लोग भी, शिशुपाल आदि भी, न जाने भगवान के लिए क्या क्या कहे हैं, वो शब्द कभी भी विद्वानों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। भ्राम्यते धीर न तद वाक्य, दुष्टों के द्वारा भगवान के विषय में जो कुछ कहा गया था वो धीर पुरुष उसे स्वीकार नहीं करते हैं। देखो भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं, कितना दिव्य उनका शरीर था विदुर, मैं एक मानव शरीर में उन्होंने लीला की, कैसे कैसे उन्होंने आभूषण पहने, विस्मापनम, इतना आश्चर्य होता था भगवान का स्वरूप देखकर हम लोगों को। और हम लोगों को तो होता था स्वस्य थे, कभी कभी भगवान को भी आश्चर्य होता कि अरे इतनी सुंदरता कहां से आई, भगवान का रूप कितना सुंदर होता है, हम लोगों को तो मोहित कर दे, भगवान का रूप भगवान को ही मोहित कर दे। ये बात भागवत में मिलेगी, अन्यत्र मिलना मुश्किल है। विस्मापनम स्वस्य से सौभगर दे, और दिव्य दिव्य जो आभूषण भगवान ने पहन रखे थे वो किस लिए पहन रखे थे, वे स्वयं विभूषित होने के लिए नहीं बल्कि उन आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए वे आभूषण पहनते थे, इतना उनका दिव्य रूप था। विदुर, बहुत सी बातें तो तुमने नहीं देखी, तुम तो हस्तिनापुर में रहे, उस दिन तुम वहां मौजूद थे ना जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, मुझे मालूम है तुम भी थे, तुम भी मेरे पास बैठे हुए थे। आहा, उस दिव्य लीला को थोड़ा सा चिंतन करके देखो तो सही, क्या उनका वहां पर दिव्य रूप था, और भगवान उस ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए इतने सुंदर लग रहे थे। अवाश्रित कौशल मित्य मन्यते, सारी सभा ये जान गई कि ये कौशल विधाता का इतना विचित्र कौशल है कि ऐसा कौशल दूसरा न, विधाता का कौशल, ब्रह्मा का कौशल चल ही नहीं सकता है, ये अपने ही कौशल से बने हुए हैं, इतने सुंदर है ये। बिचारी गोपियों के लिए क्या कहे, हम लोग भी जब उनके बोलने पर लट्टू हो जाएं, देखने पर लट्टू हो जाएं, तो जिनके बोलने पर, हंसने पर और रास में नाचने के ऊपर यदि वे बड़ भागिनी वृजांगनाएं उनके ऊपर लुब्ध हो जाए तो भाई उनके सारे काम छूट जाएं, घर गृहस्थ के तो कौन से आश्चर्य की बात है। ये वही कृष्ण थे विदुर कि जो अपने ही स्वरूप वाले साधु संतों को, अपने ही तमोगुण स्वरूप वाले राक्षसों के द्वारा जब पीड़ित होते हुए देखा तो वे कृष्ण रूप से बनकर के राक्षसों का संहार किए हैं। देखो ये वासुदेव सर्वम बता रहे हैं कि स्वशांत रूपे स्वितरे स्वरूपे अभ्यर्थ मानुष अनुकंपितात्मा, अपने तमोगुण वाले राक्षसों के द्वारा अपने ही संतों को पीड़ित देखा तो उन्होंने अवतार लिया। अवतार लिया विदुर, उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है, मुझे आश्चर्य इस बात में है कि जब वे वसुदेव जी के और देवकी के पास आए और उनको ये कहा कि क्या बताऊं पिताजी माताजी, मैं आपकी इसलिए सेवा नहीं कर सका कि कंस से भय से भयभीत होकर मुझे नंद की शरण लेनी पड़ी, ये जब मैं वाक्य सुनता हूं तो याद करता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे भगवान को भी भय है तो फिर निर्भय कौन होगा, लेकिन उन्होंने लीला की थी ऐसी, और वे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं वसुदेव जी के सामने, तो दुनोति चेतः, ये लीलाएं याद करते हैं हमारा चित्त बड़ा द्रवित होता है, भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, कितने दयालु हैं। और आपने दया का एक रूप उस राजसूय यज्ञ में नहीं देखा, भरी सभा के अंदर इस संसार में श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजा लोग आए, भरी सभा में कितना कितना अपशब्द बोल रहा था वो शिशुपाल, दृष्टा भवत भी, आपने भी वहां देखा होगा सुना होगा, लेकिन शिशुपाल गालियां निकालते 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 अंत में उसकी ज्योति जाकर उसी भगवान में लीन हो गई। कितनी दिव्य गति उसको मिली है, बड़े बड़े योगियों को वो गति नहीं मिलती, योगी भी चाहते हैं कि हमको आपका स्वरूप मिले, नहीं मिलती, और वो शिशुपाल को मिली है। अरे हद हो गई दया की, ये बात कितनी विचित्र दया की, भगवान मूर्ति है। तथी वचान्य नरलोक वीरा, और लोग कहते हैं कि ये कौरवों की सेना के साथ में लड़ने वाले लोग ये कोई मूर्ख थे, ना ना ये मूर्ख नहीं थे, ये सब बड़े पूजनीय थे। इनको मालूम चला कि अर्जुन के रथ के ऊपर आगे बैठे हुए श्री कृष्ण वहां पर विराजमान है, तो भगे भगे आते थे। आहा, मरते मरते एक बार कृष्ण को देख लें, आंख फाड़ फाड़ करके वो देखते थे और इतने लट्टू हो जाते थे, न तो उनको बाणों की पीड़ा कष्ट पहुंचा सकती थी और न कभी उनको मृत्यु का दुख हो रहा था। उनको तो श्री कृष्ण का रूप है वो बहुत ही प्रिय लग रहा था और उस रूप के अंदर वे मस्ती के साथ मर रहे थे। धन्य है, मरना है तो ऐसों का मरना बड़ा पवित्र है। नेत्रई पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूता पद्मापुरस्य, और पांडवों ये कौरवों की चांडाल चौकड़ी ने निर्णय कर लिया था कि ये कर्ण के पास जो एक अमोघ शक्ति है, इस अमोघ शक्ति का प्रहार अर्जुन पर न करके कृष्ण पर किया जाए। ये इन चांडाल चौकड़ी का विचार हो गया कि कल के युद्ध में स्वयं कर्ण आगे जाएंगे और आगे जाकर के इस कृष्ण के ऊपर अपनी अमोघ शक्ति का प्रहार करेंगे। अमोघ शक्ति माने उसका प्रहार करने पर वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, जिसका उद्देश्य लेकर वो शक्ति डाले वो मर ही जाएगा। तो इतने दिन तक कर्ण ने सोचा कि मैं अर्जुन को मारूंगा, लेकिन फिर सलाह की कि नहीं, अर्जुन में वो बल नहीं है, किसी में भी बल नहीं, सारे के सारे युद्ध के अंदर पांडवों के पास जो बल आया, एक इस बल की जड़ केवल कृष्ण है, इस कृष्ण के ऊपर ही शक्ति का प्रहार करो। क्या अच्छी बात है, देखो कर्ण कल हम ये सुनना चाहेंगे कि कृष्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया और कृष्ण मर गया। कर्ण ने कहा आप निश्चित मान करके आप आनंद के साथ ये बात मानो, विश्राम करो कि कल के युद्ध के अंदर हमारी अमोघ शक्ति से कृष्ण मारा जाएगा, तय हो गया। और कर्ण ने भी मोर्चा लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली, मुझे हर हालत में अर्जुन के सामने ही अपने रथ को ले जाना है और शक्ति का प्रहार करना है कृष्ण के ऊपर। ध्यान देवे, भगवान तो अंतर्यामी है, सब बात जानने वाले हैं। जिस मोर्चे से लड़ते हुए विश्राम लिया था, दूसरे दिन भगवान उस मोर्चे से बहुत दूर चले गए, लेकिन कर्ण ने तो यही देखा था कि मैं कृष्ण के ऊपर ही अपनी शक्ति डालूं, उसने भी अपना मोर्चा बदल दिया और वो तपाक से कृष्ण के सामने अपने रथ को खड़ा कर लिया। खड़ा करके और जो ही वो शक्ति का प्रहार करने लगा, आहा क्या सुंदर भगवान वहां मुस्कुराए हैं, क्या उन्होंने दंतावली दिखाई और क्या उन्होंने अपने नेत्र बनाए, कैसा उन्होंने ललाट मुकुट, ऐसा सुंदर रूप बनाया भगवान ने। और यूं मुस्कुराते हुए कर्ण को देखने लगे, कर्ण की शक्ति तो वहीं पर ढीली हो गई। कर्ण ने मन में सोचा कि आहा मैं क्या ऐसे ही कृष्ण के ऊपर प्रहार करूंगा, नहीं 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 नहीं, ये संसार से सुंदरता समाप्त हो जाएगी। वो भूल गया कि मैं युद्ध के लिए आया हूं कि दर्शन करने के लिए आया हूं, अवाक होकर के देखने लग गया और फिर रथ को वापस मोड़ करके चला गया। शाम को हुई कि भैया क्या बात हुई, कि बात क्या हुई, मैं तो वहां जाकर भाई हतप्रभ हो गया, मेरी शक्ति मेरे पास है इस बात की भी मेरे याद नहीं रही, और साथ ही साथ लड़ने की बात मेरे दिमाग में आती कहां, मैं तो एक नई दुनिया में चला गया। ऐसा दिव्य उसका रूप था, उस वो रूप आज विदुर संसार में हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तत्तस्य कैंकर्यम, और वे ही भगवान उग्रसेन के यहां सेवक बनकर के रहे, उनकी आज्ञा का पालन करें। बताओ ये हमारे हृदय में खटकने वाली बात है कि नहीं, क्या उसकी दिव्य लीला थी। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, मारने के लिए पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाया, परंतु उसको भी यशोदा की गति दी है, जहां यशोदा पहुंची वहीं पर पूतना पहुंची है। अब बताओ विदुर, तुम ही बताओ इससे बढ़कर और संसार में कौन श्रेष्ठ दयालु है, किसकी शरण में हम जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई हमारा शरण्य नहीं है। वे नंद बाबा के यहां रहे, 11 वर्ष की उम्र थी तब तक उन्होंने बाल लीला की, और उस बाल लीला में विदुर तुमने तो पूरी बात नहीं देखी, हमने बहुत देखी है। वो छोटे छोटे बछड़ों के साथ जाते थे, बालकों के साथ जाते थे, यमुना नदी के ऊपर जा जा करके तरह तरह की केलियां करते थे। कौमारीम दर्शयन्स्तेष्टाम, अपनी कुमार लीलाओं को उन्होंने दिखाया, सारे ब्रज को प्रेम से लबालब भर दिया, और उन्होंने वहां पर बांसुरियां बजाई, सबको अपने में आकृष्ट कर लिया। भोजराज कंस ने जो जो इच्छानुसार रूप बनाने वाले राक्षसों को भेजे, वे सब के सब उसके द्वारा नष्ट हो गए। यमुना का उद्धार कर लिया और स्वयं इंद्र का भी उन्होंने मत दूर कर दिया। उसके बाद भगवान यहां मथुरा में आए और कंस का वध किए, संदीपनी के पास विद्या प्राप्त की और फिर बाद में रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। नाग्नजीति के साथ विवाह हुआ। भौमासुर के यहाँ अवरुद्ध हुई, 16,000 से ज्यादा जो रानियां थी, कुमारियां थी, उनके साथ उन्होंने, बड़ी सुंदर बात है, और लोग कहते हैं कि एक कृष्ण ने 16,108 के साथ विवाह किया। भागवत में 2-3 जगह ये बात मिल जाएगी। देखो 16,108 रानियां थी तो भगवान ने भी 16,108 रूप बना करके विवाह किया था। आशा मुहूर्त एक अस्मिन नानागारेशु योषिताम, 16,000 पहले महल बनाए और प्रत्येक महल में एक ही समय में एक एक राजकुमारी के साथ उन्होंने विवाह किया था। ये केवल ऐश्वर्य भगवान के पास ही है और दूसरे के पास नहीं है। और फिर उनके लड़का लड़की हुए और उनकी सृष्टि बढ़ी। शंबरासुर, द्विविदासुर, बाणासुर, इन सब का उन्होंने संहार किया। इन सब के संहार के बाद भी, जब ये कौरवों के पांडवों के संहार पर भी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ, तब विचार किया कि अभी मेरा और काम बाकी है। उन्होंने अपने ही वंश में पैदा हुए जो ये यदुवंशी हैं, इन यदुवंशियों के संहार के लिए विचार किया क्या किया जाए। तब भगवान के संकल्प से उनको ब्राह्मणों का शाप मिला और ब्राह्मणों के शाप से फिर वे ही आपस में लड़ भिड़ करके खत्म हो गए। ये सब प्रभास क्षेत्र में गए, वारुणी मदिरा पी ली और फिर वहां आपस में लड़ भिड़ करके सब खत्म हो गए। मैं उनके पास था, सब लीलाओं में, बहुत सी लीलाओं में मैं उनके साथ था। इस अंतिम लीला में जब मैं वहां गया तो वहां बद्रीम त्वम प्रयाहिति, मैं उनके पास गया तो मैंने प्रार्थना की कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि देखो उद्धव, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, अब तुम बद्रिक आश्रम में चले जाओ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बद्रिक आश्रम में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चोरी छिपे भी पीछे पीछे उनके पीछे गया कि महाराज जब तक आपका शरीर यहां है तब तक तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं। पृष्ठ तो अन्वगमम भरतु, अब देखो महाप्रयाण की लीला एक तो यहां मिलेगी, एक एक एकादश के अंत में मिलेगी, तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, थोड़ी सी भिन्नता मिलेगी इसमें, वो वहां बता दी जाएगी। मैं पीछे पीछे गया भगवान के, तो देखा कि भगवान ने सारे कुल का संहार जान करके बलराम जी को भी देखा कि वे भी इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। तो फिर वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और उन्होंने अपना दाया चरण है वो बाएं गोडे के ऊपर रख दिया और वृक्ष मूल का यूं सहारा ले लिया, तने का सहारा ले लिया और भगवान बिल्कुल शांत रूप से वहां पर विराजमान थे। प्रशांतारुण लोचनम, नेत्रों से बड़ी शांति थी, बरस रही थी, केवल अकेले थे भगवान। चार उनकी भुजा है, पीताम्बर पहन रखा है और उस समय में सब कुछ खाना पीना आदि त्याग करके बिल्कुल अपने स्वरूप में वे स्थित है। इतने में ही घूमते घूमते वहां पर मैत्रेय जी महाराज आ गए। मैंने देखा चलो अकेले बैठे थे, मैं अकेला जाता तो कोई बात ही होती, तो यहां मैत्रेय जी आ गए तो मैत्रेय जी के साथ में मैं भी खड़ा हो गया। मैत्रेय जी महाराज ने भगवान के दर्शन किए, मैंने भी दर्शन किए, हम दोनों के दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े थे। उस समय में भगवान मुस्कुराते हुए मेरी ओर इशारा करते हुए कहने लगे उद्धव तुम जो अपने मन में चाहते हो मुझे मालूम है, तुम सामान्य पुरुष नहीं हो, सामान्य यादव नहीं हो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ऐसा है स एस साधु चरमु भवानाम आसादितस्ते मदनुग्रहो यत, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और मेरी कृपा से तुम एकांत में, मैं अपनी लीला को समेट रहा हूं, ऐसे दिव्य रूप को देखने के लिए आए हो, तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम्हारा निश्चित कल्याण है। मैं तुमको एक वो बड़ा बड़ा गोपनीय भागवत सुनाना चाहता हूं जो ज्ञान पहले मैंने पद्म कल्प के अंदर ब्रह्मा जी को दिया था। वह हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज जिसको आपके, मैंने हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया, महाराज जिनको आपके चरणों का आश्रय मिल जाता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है। फिर भी महाराज मुझे आश्चर्य होता है आप सब कुछ कर्म करते हुए भी अकर्ता हो, सब कुछ लेते हुए भी आप बिल्कुल निरीह हो, निष्प्रिय हो, असंग हो, और मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने बड़े बलवान सर्वशक्तिमान होकर आप कभी कभी शत्रुओं से छिप करके अपना नाम रण छोड़ रख करके भी बड़े प्रसन्न होते हो और बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि आप आज तक संसार में इतना विवाह नहीं हुआ होगा, ऐसा ऐसा आपने विवाह किया और फिर भी आप उन सबसे अलग रहकर स्वात्मन रहते, अपने स्वरूप में आपने रमण किया है महाराज, और फिर एकांत में आप मुझे वो भागवत सुनाने जा रहे हैं महाराज, ये आपकी अतिशय कृपा है, सुना दीजिए महाराज। ये बार बार कब मौका मिलेगा, कब आपका और हमारा संयोग मिलेगा, आप अपने हृदय की बात है भागवत के रूप में जो ब्रह्मा को कहा वो हमको भी सुना दो। विदुर उस समय में कितने प्यार से, कितने कोमल शब्दों से, कितनी आत्मीयता से उन्होंने मुझे सुनाया। आहो वो भागवत सुन करके तो मैं एकदम गदगद हो गया। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम, मैं उनके चरणों में गिर गया और फिर उनको बड़ी श्रद्धा से परिक्रमा करके प्रणाम करके मैं उनके दर्शनों को जब स्मरण में लाता हूं तो मेरे से एक कदम भी चला नहीं जाता है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं बद्री का आश्रम में जा रहा हूं जहां नर नारायण तपस्या किए हैं और उसी तपस्या के बल पर सब जीवों को भी शांति प्रदान किए हैं, मैं बद्री का आश्रम में जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित जब विदुर जी को यह पता चला कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं और एक अत्यंत दिव्य ज्ञान है वो उद्धव जी को दिए हैं, विचार किया कि अरे दुनिया में और तो सब मिलेंगे पर ज्ञानी महात्मा कब कब मिलते हैं। विदुर जी हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, महाराज भगवान ने जो ज्ञान आपको दिया है वो ज्ञान आप मुझे क्यों नहीं कह देते, वो ज्ञान आप मुझे भी दे दीजिए, मैं आपका सेवक हूं और स्वामी तो अपने सेवकों का कल्याण ही तो करते हैं। भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति, हम लोग आपके कृपा से कृतार्थ हो जाएंगे, आप अपना ज्ञान हमें दीजिए। उद्धव जी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो विदुर चिंता मत करो, जिस समय में भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वरूप को अपने में ही लीन कर रहे थे, अपने अवतार को अपने में लीन कर रहे थे, मेरे देखते देखते मेरे सामने भगवान ने कहा था कि मैत्रेय जो ज्ञान मैंने उद्धव को दिया है वो ज्ञान तुमने भी सुना है और हे मैत्रेय ये ज्ञान मेरे प्रिय विदुर को अवश्य सुना देना, तो तुमको उस समय में याद किया था और मैत्रेय जी के लिए कहा था, तो अब तुम जाओ, तुम्हारे ज्ञान मैत्रेय जी के साथ में जुड़े हुए ज्ञान के संबंध उनके पास जाओ और वही तुमको सुनाएंगे। राजा ने पूछा कि महाराज जब ये ब्राह्मणों का शाप सबके लिए लागू हो गया था यदुवंशियों के लिए तो उनमें एक उद्धव जी क्यों बच गए। वाह भाई बहुत सुंदर बात पूछी है तुमने, ये उद्धव जी ब्राह्मणों के शाप से तो मर चुके थे लेकिन ब्राह्मणों के शाप से भी बड़ा एक भगवान का संकल्प होता उससे ये बच गए। भगवान ने विचार किया कि हमारे वंश में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है, निरीह कौन है, वैराग्यवान कौन है, श्रेष्ठ कौन है, तो विचार किया कि ये उद्धव मेरे से कम नहीं है, अतः भगवान ने अपनी शक्ति से उद्धव के प्राण रखे ताकि लोग उद्धव के इस ज्ञान को सुने जाने पहचाने और लोग अपना कल्याण कर लेवे। इधर विदुर जी महाराज ने उद्धव जी को प्रणाम किया और उद्धव जी बद्री का आश्रम की तरफ चले गए और विदुर जी महाराज वहां से यह खोज करने के लिए कि मैत्रेय जी कहां मिलेंगे, मैत्रेय जी कहां मिलेंगे, पता चला कि मैत्रेय जी महाराज गंगा जी के तट के ऊपर एक आश्रम में है। विदुर जी महाराज वहां से रवाना हुए और रवाना होकर के और वे कुछ ही दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। भक्त प्रवर उद्धव जी से विदुर जी महाराज के मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को संक्षेप में सुनने के बाद और मैत्रेय जी के द्वारा मुझे भगवान ने ज्ञान सुनने के लिए कहा है ऐसी बात जानने के बाद विदुर जी महाराज गंगा के तट पर मैत्रेय जी के पास आए और बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं, सुख के लिए चेष्टा करते हैं परंतु उन्हें दुख क्यों मिलता है, आप जैसे महापुरुष तो भगवान से विमुख हुए प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए ही देह धारण किए हुए हैं, ये आप हमें समझाइए। साथ ही साथ भगवान निरीह होकर सृष्टि को क्यों पैदा करते हैं, किन चीजों से सृष्टि को बनाते हैं, भगवान अवतार लेकर लोगों का कल्याण करते हैं परंतु उनकी लीलाओं को सुनते सुनते हमारा मन तृप्त नहीं होता है, ऐसी भगवान की लीलाओं को आप सुनाइए। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कथा अमृत का आस्वादन नहीं हुआ है वे ही संसार के मलिन सुखों की ओर अपनी बुद्धि लगाते हैं, परंतु भगवान की कथा सुनने के बाद न तो भोग प्रिय लगते हैं, न घर अच्छा लगता है और न ही कुटुंब में पहले जैसी आसक्ति रहा करती है। मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, कितने ही भोगों को भोग ले, इन भोगों के साथ हमारा संबंध विच्छेद होगा ही, इसलिए हमें तो उनके लिए बहुत ज्यादा विचार होता है। जो लोग अपने सामने मृत्यु को देखते हुए भी भगवान की कथा से विमुख है, सुनने के लिए तो हमने वेदव्यास जी के मुख से भी कई बातें सुनी है, परंतु भगवान के विषय में सुनते हुए तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप भगवान की कथाओं को कहें और ये सृष्टि कैसे बनी है इस बात को भी समझावें। विदुर जी की बात सुनकर मैत्रेय जी ने उनका बहुत सम्मान करते हुए कहा कि हे विदुर, तुम्हारी नीतियों को सुनने के लिए सारा संसार लालायित रहता है, फिर भी तुमने हमसे प्रश्न किया है तो यह केवल लोगों के कल्याण के लिए किया है, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मांडव्य ऋषि के साप से साक्षात यमराज ही आप विदुर के रूप में यहां अवतार लिए हैं, आपके विषय में जिस ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान ने मुझे आज्ञा दी वह मैं आपको सुनाता हूं। देखो इस सृष्टि में पहले ही पहले केवल भगवान थे, सब प्रकार की बुद्धि वृत्तियां उनके अंदर लीन हुई पड़ी थी, भगवान के अलावा और कोई नहीं था, वे ही भगवान जब कुछ न कुछ देखने की इच्छा करने लगे तो उनके सामने माया आकर खड़ी हो गई। उस माया के द्वारा उन्होंने काल शक्ति को लेकर गुणों में क्षोभ पैदा किया जिससे एक ज्ञानात्मक महत्त्व पैदा हुआ और भगवान ने अपना अंश उसमें रख दिया। अब महतत्व में फिर भगवान ने क्षोभ किया तो अहंतत्व पैदा हुआ, उस अहंतत्व में भी भगवान ने अपना अंश रख दिया, फिर वो अहंतत्व तीन प्रकार का हुआ, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार से देवता पैदा हुए, राजस अहंकार से इंद्रियां पैदा हुई और तामस अहंकार से ये पंच महाभूत पैदा हुए। पंच महाभूतों में पहले ही पहले आकाश पैदा हुआ, भगवान ने काल माया और अपना चेतनांश उसमें रख करके उसमें क्षोभ पैदा किया तो उससे वायु पैदा हुआ, फिर वायु के अंदर अपना अंश रखा तो फिर रूप पैदा हुआ, फिर रूप से रस पैदा हुआ और रस से ये पृथ्वी पैदा हुई, इन सब के अंदर भगवान का एक चेतनांश चला आ रहा है। ये सब चीजें जब पैदा हो गई, परंतु सृष्टि तो बनी नहीं, अलग अलग सब लाकर रख दी गई सब, तब ये सारे के सारे देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे। पृथ्वी भी देवता है, वायु भी देवता है, जल भी देवता है, आकाश भी देवता है। ये सब बातें हमारे शास्त्रों से सम्मत हैं, इसलिए जो जो पैदा हुए सब के सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आपके आश्रय को प्राप्त करने के बाद संसार का दुख बहुत आसानी से दूर हो जाता है, आपको भूलने के कारण से ही जीवों को शांति नहीं मिलती, तीन प्रकार का ताप इनके सदा पीछे लगा रहता है, और आपके चरण कमलों की छाया ले लेते हैं तब इन सब जीवों को शांति मिलती है। बड़े बड़े ऋषियों ने वेद रूपी पक्षी के पंखों के उड़ान से आप ही को प्राप्त करने का उपाय किया है। भक्ति से आप प्रसन्न होने वाले हैं, संसार में लोगों का कल्याण करने के लिए आप अवतार धारण करते हैं, हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। जिन्होंने शरीर में और पदार्थों में अहंता और ममता का त्याग कर दिया है, वे लोग आपके चरणों को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, और देह गेह में आसक्त वालों से आप बहुत दूर हैं। असद वृत्ति वाले अपने मन को इंद्रियों के साथ जोड़कर संसार के विषयों में लगाते हैं, न पश्यन्त्युर्गाय, वे आपके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। परंतु जिन्होंने आपका कथामृत पी लिया है, जिनके अंदर आपकी भक्ति पैदा हो गई है, और संसार से जिनको वैराग्य प्राप्त हो गया, वे आपको और आपके स्वरूप को, आपके धाम को प्राप्त हो जाते हैं। हम लोगों को आपने सृष्टि के लिए बनाया है, हम सब अलग अलग पड़े हुए सृष्टि को बना नहीं सकते हैं, आप ऐसी कृपा करें कि हम में सृष्टि बनाने की शक्ति आ जाए। सृष्टि बनेगी, जीव पैदा होंगे, वे जीव आपके आपका भजन करेंगे और आपको अपने कर्मों को अर्पित करेंगे, उससे आपको महान आनंद का अनुभव होगा। इसलिए हे देवादिदेव, हम सब आपकी कृपा की ओर ही देख रहे हैं। देवक क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम, ऐसी कृपा करो जिससे सृष्टि की रचना हो जाए और हम आपकी सेवा कर सकें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन सब की बात सुनकर के भगवान ने उन सब को इकट्ठा किया, सबको मिलाया, और प्रसुप्त लोक तंत्राणाम निशाम्य गति में ईश्वर है, और जिन जिन जीवों के जहां जहां जैसे जैसे प्रारब्ध हैं, और वो प्रारब्ध अभी सोया हुआ पड़ा था, उन सब को जगाने के लिए भगवान ने सृष्टि के सारे तत्वों को इकट्ठा किया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। तब वो एक बहुत बड़ा अंडा बना, और उस अंडे का फिर तीन प्रकार से विभाग हुआ, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत के रूप में, और उसमें 10 प्रकार का प्राण भगवान ने उसमें रख दिया। यही सारा का सारा सृष्टि रूप से भगवान का विराट अवतार है। अब यहां निर्विध्यंत देवानाम तानिमे गदत श्रेणु, देखो हमने पहले भी बताया था कि सृष्टि के निर्माण में बाहर से एक सी बात दिखेगी, लेकिन कहीं कहीं पर देवताओं की प्रधानता से सृष्टि बनी है, कहीं कहीं पर अधिभूत की प्रधानता से सृष्टि बनी है। तो यहाँ देवताओं की प्रधानता से सृष्टि का निरूपण करते हैं कि देवतानि तानि मे गदत श्रेणु, माने अमुक अमुक देवताओं के लिए अलग अलग जगह मिल गई। सबसे पहले उनका मुख पैदा हुआ जिसमें जाकर अग्नि देवता बैठ गए, अपने साथ में वाणी को ले लिए। देखो वाणी का और अग्नि का बड़ा आपस में संबंध है, तो जिससे बोला जाता है वो वागीन्द्री आकर अग्नि के साथ मुख में बैठ गई। फिर उनके तालु पैदा हुए जहां पर वरुण देवता आकर बैठ गए जिह्वा को लेकर, जिससे रस का ज्ञान होता है। नाक में आकर अश्विनी कुमार बैठ गए घ्राणेन्द्रिय को लेकर, जिससे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। आंखों में आकर त्वष्टा देवता बैठ गए, सूर्य आकर बैठ गए, जिससे रूप का ज्ञान होता है। नेत्रेंद्रिय को लेकर बैठ गए वो, और फिर उनकी त्वचा का निर्माण हुआ। उस त्वचा के अंदर वायु आकर बैठ गया और वो प्राणों के साथ में आकर बैठ गया। फिर कान पैदा हुए जिसमें दिशाएं आकर बैठ गईं, दिशाओं के साथ में श्रोत्रेंद्रिय आ गया जिससे शब्द सुना जाता है। इस प्रकार से तरह तरह की इंद्रियां तरह तरह के स्थानों पर जाकर हो गई। हाथ है, पैर है, बुद्धि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी जाकर बैठ गए जिससे ज्ञान होता है। बोधे नांशे न बोधव्य प्रतिपत्तिर यतो भवेत, जिससे जानने योग्य चीज का ज्ञान होता है वो बुद्धि है, और वो बुद्धि को ले बुद्धि के अंदर ब्रह्मा जी जाकर बैठ गए। संकल्प विकल्प करने के लिए हृदय चाहिए था, वहां हृदय बन गया तो मन आकर उसमें चंद्रमा आकर बैठ गए, जिससे तरह तरह के संकल्प विकल्प होते हैं। कहते हैं फिर अहंकार का निर्माण हुआ जिसमें रुद्र आकर बैठ गए। चित्त का निर्माण हुआ जिसमें महतत्व के अंदर चित्त आकर बैठ गए। इस प्रकार से ये विराट रूप है भगवान का। ये नीचे के लोग भगवान के चरण हैं, मध्य के लोग भगवान की नाभि है, ऊपर के लोग भगवान के सिर हैं। जिनमें सत्वगुण की अधिकता है वे ऊंचे के लोक हैं, जिसमें रजोगुण की अधिकता है वो मध्य के लोक हैं, और जिसमें तमोगुण की अधिकता है वे नीचे के लोक हैं। ब्राह्मण उसका मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजा है, वैश्य उनका उदर है और शूद्र उनका चरण है। इस प्रकार से एक ही भगवान से सारे वर्ण, सारे आश्रम, सारे चीजें, सब प्रकार के ये जीव जंतु उनसे पैदा हुए हैं। फिर उन भगवान के विषय में हम क्या बतावें। भगवान ने फिर इन्हीं जीवों पर कृपा करने के लिए तरह तरह के अवतार लिए हैं। तो आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। हजारों वर्षों तक भी भगवान के इन लीलाओं का कोई चिंतन करने लगे तो भी इनका कोई पार नहीं है। भगवान की माया सबको मोहित कर देने वाली है। नवेद के मुतापर है, अरे स्वयं भगवान भी अपनी माया को नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते। निर्गुण में चाहे सगुण में, सगुण में आपने सुना ना कि भगवान कितने सुंदर हैं कि उनको अपनी सुंदरता का ज्ञान नहीं, उनको भी आश्चर्य है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी जो परब्रह्म परमात्म तत्व है वो तत्व सर्वज्ञ है, लेकिन उसकी भी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से जहां तक वाणी पहुंच नहीं सकती, मन पहुंच नहीं सकता, दूसरे पहुंच नहीं सकते, ऐसे देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। विदुर जी ने पूछा कि महाराज आपने सृष्टि के विषय में तो बताया कि ऐसे ऐसे भगवान की इच्छा से सृष्टि बनी, परंतु महाराज भगवान के मन में इच्छा पैदा होती ही क्यों है? क्योंकि भगवान तो निर्विकार है, निर्विकार में इच्छा रूप विकार होगा ही कैसे? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। ये इच्छा है, ये विकार है, और भगवान तो सर्वथा निर्विकार है, तो निर्विकार में ये इच्छा रूप विकार पैदा कैसे हो गया? दूसरी बात है कि कोई भी इच्छा करने वाला होता है वो पहले अपने में अभाव का अनुभव करता है, उसके बाद ही वह इच्छा करके और इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है। भगवान में तो किसी चीज का अभाव है नहीं, भगवान तो स्वतः तृप्त है। तो स्वतः तृप्त भगवान में ये इच्छा ही क्यों पैदा हुई कि मैं संसार को बनाऊं? कहते हैं खेलने के लिए, तो यही तो पूछना है कि खेलने के लिए भगवान ने क्यों बनाया? ये खेलना तो बच्चों का काम होता है, क्योंकि बच्चे में सुख का विकास नहीं हुआ इसलिए वो खेलता है। फिर भगवान जाने क्या उनको सूझता है, संसार को बनाते हैं, संस्थापयति संस्थापित करते हैं, और उसके बाद भूय प्रत्यभिधास्यति और फिर वापिस वे अपने में उसको लीन भी कर देते। तो जिनका ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता, ऐसा अखंड ज्ञान भगवान को है, फिर वे माया के साथ जुड़ते हैं, संसार को बनाते हैं, संसार के बनाने की इच्छा करते हैं, और फिर वे ही भगवान जीव रूप से आकर के तरह तरह का दुख भोगते हैं। ये हमारे समझ में नहीं आया, क्या लीला हो रही है भगवान की। तो आप हमारे इस अज्ञान को दूर कीजिए और हमारी शंका का निराकरण कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे तत्व जिज्ञासु विदुर की बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए मैत्रेय जी महाराज। कहने लगे कि भाई तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, अब ये भगवान के विषय में तुमने बात पूछी तो भाई इस बात का उत्तर तो हम भगवान का ध्यान करके ही दे सकते हैं, अर्थात अपने चित्त को भगवान में लगावे उसके बाद आपको देवे, क्योंकि भगवान में निर्विकारता भी जानते हो और विकार दिख रहा है, भगवान में निरीहता जानते हो फिर इच्छा दिख रही है, भगवान में स्वतः तृप्तता है फिर भी तुमने अभाव को देखा है। अब हम तुमको इस विषय का रहस्य समझाते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं देखो भाई, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वो जीव भाव में स्थित होकर के प्रश्न किया है। आपने जैसे जीव होता है ऐसे ही भगवान होते होंगे, ऐसा जीव का जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ में भगवान को मिला करके प्रश्न किया है। सेयम भगवतो माया यन नयेन विरुध्यते, किसी भी तर्क के द्वारा जो बात सिद्ध नहीं हो पाती फिर भी वो चीज है, इसका मतलब ये भगवान की विचित्र माया है। है नहीं फिर भी है, क्योंकि ये परम ईश्वर है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सबसे परे है, सबसे मुक्त है, फिर भी उनका बंधन देखा जाता है, फिर भी वे यहाँ संसार को करते धरते से मालूम देते हैं। ये क्या है, ये हम लोगों के समझने में भेद हो रहा है। और स्वप्न में ये देख रहा है कि मेरा सिर कट गया, मैं मर गया, लोग मुझे उठा रहे हैं और शमशान में ले जा रहे हैं और जला रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि भाई तुम वास्तव में मर गए क्या, मर जाते तो देखते कैसे, देख रहे हो तो मरे कैसे, लेकिन जब तक स्वप्न दूर नहीं होता है तब तक स्वप्न का मरना सत्य प्रतीत होता है और वहां पर रोना भी लिखना भी हो जाता है। इसी प्रकार से जब तक जीव अपने पर आए हुए इस अज्ञान के आवरण को दूर नहीं करता है तब तक उसको ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारे ही समान कर्म करके फंसते होंगे, भगवान भी हमारे ही समान इच्छा करते होंगे, भगवान भी हमारे ही समान काम करते होंगे। वास्तव में ऐसी बात है नहीं विदुर। जिस प्रकार से आकाश में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा जल के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है, परंतु जल के हिलने से प्रतिबिंब तो हिलता हुआ दिखता है, आकाश में रहने वाला चंद्रमा थोड़ा ही हिलता है। ऐसे ही माया के द्वारा जीव ही बंधन को प्राप्त होता है, हर्ष को प्राप्त होता है, शोक को प्राप्त होता है, मूर्छा को प्राप्त होता है, परंतु परमात्मा का कोई भी उससे संबंध नहीं होता। सच पूछा जाए तो जैसे चंद्रमा की एक प्रतीति होती है, माने जल के अंदर मिथ्या प्रतीति होती है, वास्तविक चंद्रमा नहीं है, ऐसे जीव का भी जब तक माया के साथ संबंध है तब तक वो भगवत स्वरूप प्रतीत नहीं होता। माया का संबंध टूटने के बाद बिल्कुल भगवत स्वरूप ही प्रतीत होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। इसलिए भगवान वासुदेव की जब अनुकंपा होती है और भक्ति जब उनके अंदर पैदा होती है तो फिर तिरोधत्ते शनैरी है, ऐसे ऐसे संदेह बहुत जल्दी तिरोहित हो जाते हैं, छिप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे संदेहों के नष्ट हो जाने के बाद ऐसा आनंद मिलता है जैसे किसी की नींद टूट जाने के बाद जागने पर उसको आनंद मिलता है। तो हे विदुर, भगवान की कथा सुनने से ये सारे संदेह दूर हो जाते हैं, वहां ये हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये जीव भी साक्षात भगवान ही है और ये सृष्टि भी साक्षात भगवान ही है। भगवान के चरणारविंदों की सेवा मिल जाए, उनके स्वरूप का चिंतन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। अब विदुर जी महाराज कहने लगे कि महाराज देखो थोड़े से सत्संग से मनुष्य को कितना प्रकाश मिलता है। आपने तो मुझे बिल्कुल अलग अलग करके बता दिया कि जीव का सोचना अलग है और भगवान का सोचना अलग है। उभयत्रापि भगवन, मेरा आप दोनों तरफ मन अच्छी तरह से जा रहा है। ईश्वर तत्व को भी समझ रहा हूँ और जीव तत्व को भी समझ रहा हूँ। मैंने तो जीव और ईश्वर को बिल्कुल एक जैसा घुला मिला सा मान लिया था, वास्तव में ऐसा हमको घुला मिला हुआ नहीं मानना चाहिए। मेरे दिमाग में अब ये बात बैठी है कि ये सृष्टि वास्तव में है नहीं जैसा हम समझ रहे हैं, ये सृष्टि और ही ढंग की है, हमारे सृष्टि को समझने में भूल हो रही है। आभाति अपार्थम निर्मूलम, ये सृष्टि जैसा हम देख रहे हैं निर्मूल है, वास्तव में इसके मूल में तो परमात्मा ही है। आहा, बड़ी कृपा हुई आपकी, आपने थोड़े ही शब्दों में मुझे बहुत अच्छी बात बता दी। आपने बताया कि भगवान से ब्रह्मा पैदा हुए, तो महाराज अब बताओ कि ब्रह्मा के आगे जो मनु आदि पैदा हुए हैं, इनका विस्तार कैसे हुआ? मनुओं के कितने कितने चरित्र हुए हैं, मनु के बेटों का क्या क्या चरित्र है, पृथ्वी का कितना मान है, और देवता मनुष्य पशु पक्षी कैसे पैदा होते हैं, ये आप हमको समझाइए। वर्णाश्रम विभाग क्या है, पाखंड क्या है, यज्ञ क्या है, जीव की गतियां कितनी है, श्राद्ध की विधियां क्या है, यज्ञ दान तप इन सब का क्या स्वरूप है, और भगवान किस कर्म से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं वो बात बताओ। और साथ ही साथ जो हमने नहीं पूछा है और आपको बताना उपयुक्त लगता है वो बात भी आप हमको बताओ। और महाराज स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसाम भक्तिर वैराग्यमेव वः, क्यों महाराज ये ज्ञान स्वतः होता है, वैराग्य स्वतः होता है, भक्ति स्वतः होती है, आहोसित इसके लिए कोई नई प्रकार की साधना करनी पड़ती है, बताइए। देखिए महाराज, इस जीव को अभय करने में कोई भी समर्थ नहीं है, चाहे कितने ही वेदों की पढ़ाई कर ले, चाहे कितना ही यज्ञ कर ले, चाहे कितना ही दान कर ले, चाहे कितनी ही तपस्या कर ले, इन सब से जीव वैसा निर्भय नहीं होता है जैसा सत्संग के माध्यम से वह आपके भगवान के विषय में सुनता है, अपने स्वरूप के विषय में सुनता है, और उससे जो जीव को अभय मिलता है उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। अतः आप हमको ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम निर्भय हो जाए, और जो जो मैंने प्रश्न किया उन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, आप बड़े श्रेष्ठ वंश में जन्म लिए हो। अब देखो मैत्रेय जी अपनी परंपरा की भागवत की बात कहते हैं। अब मैं लोगों के हित के लिए भागवत को बोल रहा हूं। आप देखेंगे कि आज तीन चार दिन हो गए भागवत कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं, तो ये भागवत कब कहेंगे पता नहीं। तो ये भागवत ही चल रही, जो कुछ इसमें कहा जा रहा है वो भागवत ही है। देखो भागवत कहेंगे इससे पहले जो कहा वो भी भागवत है, भागवत कहेंगे ये जो कहा जाता है ये भी भागवत है, और इसमें आगे जो कहा जाएगा वो भी भागवत है। तात्पर्य हमको पकड़ना है इन सब में। कहते हैं हमने जो भागवत सुना है उस भागवत को हम सुनाते हैं कि पाताल के अंदर भगवान शंकरषण है, वो शेष नाग की गोद के अंदर विराजमान है। हजारों हजारों फणों से शेष नाग ने भगवान के दिव्याति दिव्य स्वरूप को अपने अंदर रख रखा है, वे भगवान शंकरषण है। उन शंकरषण भगवान से भागवत सुनने के लिए सनकादि ऋषि आए, सनकादिकों ने अपने जटाओं में गंगाजल ले रखा है, और गंगाजल लेकर के और वे अपने गंगाजल से उनके चरणों को धोते हैं और फिर वो चरणामृत लेते हैं। भगवान शंकरषण जिनको वासुदेव भी बोलते हैं, अपने कमल के समान जो नेत्र है खिले हुए, उन खिले हुए नेत्रों को आधा खोले हुए हैं और बड़े प्रेम से वे सनकादिकों की ओर देख रहे हैं। स्वर्धन्युदाद्री स्वजटा कलापई, और वहां वे सनकादि ऋषि भी भगवान के चरण चौकी के लिए बना हुआ जो दिव्याति दिव्य कमल है उस कमल के ऊपर अपना सिर रख देते हैं, और फिर भगवान बड़े प्रेम से निवृत्त निरत सनकादियों को अपना उपदेश देते हैं। सनत कुमार उस उपदेश को ग्रहण करते हैं। सनत कुमार ने वो उपदेश फिर सांख्यायन को दिया है, सांख्यायन ने पराशर को दिया और बृहस्पति को दिया, पराशर ऋषि ने मुझे कहा और वही भागवत मैं तुमको कह रहा हूं। तो ये जो सांकर्षणी भागवत है इसमें भी छह है कहने वाले, और नारायणी भागवत है उसमें भी है छह वक्ता। अब याद रखें कि नारायण और संकर्षण ये दो है या एक है, कि बिल्कुल एक है। जिस समय में बैकुंठ में रहते हैं तब वे नारायण कहलाते हैं, और वे ही जब यहां पाताल में जाकर शेषशायी बनते हैं तब वे संकर्षण कहलाते हैं। दो नहीं है, एक आदमी यदि किसी और जगह बैठता है तो और पद के ऊपर है तो और कहलाता है, और दूसरे पद पर जाता है तो और कहलाता है। पद और नाम उसके अलग अलग हैं, वो आदमी एक ही होता है। ऐसे ही वो बैकुंठ शाही भगवान वे ही जब शेषशायी बनते हैं तो संकर्षण के नाम से कहलाए जाते हैं। अस्तु तो हे विदुर, मैं तुमको बताता हूं कि शुरू शुरू में सृष्टि में कुछ नहीं था और ब्रह्मा आदि भी नहीं थे। चतुर्युगानां च सहस्रमाप्सु स्वपन, उस समय में सारी सृष्टि भगवान में लीन थी, भगवान भी अपने योग निद्रा में थे। देखो हमको जैसे बेहोशी से नींद आती है, ऐसे भगवान को बेहोशी से नींद नहीं आती है, वो जागते हुए भी विश्राम करते हैं, उनका जागते हुए सोना होता है। हजार चतुर्युगी के बाद भगवान के मन में आई सृष्टि को बनाने की, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा पैदा होने के बाद ब्रह्मा ने देखा कि मैं कौन हूं, ऐसे चारों तरफ देखा तो चारों तरफ देखते उनके चार मुख हो गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों मुख हो गए। फिर देखा कि अरे भाई मैं किससे पैदा हुआ हूं, मेरे को पैदा करने वाला कौन है। तब वो ब्रह्मा जी देखे कि मैं तो एक कमल में से पैदा हुआ हूं, ये कमल की जो नाल है इस नाल के अंदर ये नाल देखते हैं कहां जाकर टिकी हुई है, वहीं मैं जाता हूं। ऐसा विचार करके वो ब्रह्मा जी कमल नाल के अंदर धंस गए और खूब गहरे जाते गए जाते गए जाते गए। बहुत नीचे तक गए तो वहां पर उनको इसका अंत का पता ही नहीं चला। वे हजारों वर्षों तक वहां नीचे जाते रहे लेकिन उनको कभी उस बात का पता नहीं चला कि कमल कहां से निकला हुआ है। तब वे वापस बाहर आ गए। ततो निवृत्त अप्रतिलब्ध काम है, जब उनका काम पूरा नहीं हुआ तो बेचारे वापस उसके ऊपर बैठ गए और बैठ करके और आंख बंद करके यूं ध्यान करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने और तो कुछ देखा नहीं था, यूं आंख बंद किए, इतने में ही उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि अहो भगवान का दिव्याति दिव्य रूप मेरे हृदय में है, वे शेष नाग के शैया के ऊपर विराजमान है, उनका एक एक अंग बहुत ही सुंदर है। फणात पत्रायुत मूर्ध रत्न द्युभिर हतध्वंत युगांत तो ये, हजारों हजारों फणों के ऊपर जो मणियां हैं उस मणियों से सारा अंधकार दूर हो चुका है, उसमें परम देदीप्यमान भगवान विराजमान है, दूर दूर तक उनकी शोभा छटक रही है।